पृष्ठ संख्या 182, अध्याय 10, कुछ दरबारी परंपराएं। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात 18वीं शती के उत्तरार्ध में केंद्रीय शासन की दुर्बलताओं के कारण अनेक छोटे मोटे राज्य अस्तित्व में आए। इनमें हैदराबाद, अवध, लखनऊ, मैसूर, रामपुर, रायगढ़, काशी, जौनपुर, इंदौर, ग्वालियर, झांसी, बांदा, दतिया, रीवा, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, डूंगरपुर, चरखारी, बीजना, भावनगर, भावनगर, जामनगर, बड़ोदरा, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पटियाला, ढाका, रामगोपालपुर, नाटोर, मुर्शिदाबाद आदि प्रमुख थे। धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं राजकीय विविधताओं एवं शासकों की रुचि तथा प्रभाव के अनुसार संगीत की विविध गतिविधियां इन राज्यों में होती रहती थीं तथा अनेक गायन शैलियों का प्राधान्य शासकों की रुचि के अनुसार वहां बना रहता था। कहीं ध्रुपद गायकी का प्रभाव था तो कहीं ख्याल गायकी का, कहीं ठुमरी दादरा टप्पा में रुचि थी तो कहीं सोज मर्सिए का बोलबाला था, कहीं कथक नृत्य एवं तबला वाद्य छाया हुआ था तो कहीं वीणा वीन और पखावज का प्रभाव था। किंतु यह सत्य है कि इन्हीं राजा महाराजा नवाब ठाकुरों की गुणग्राहिता और संगीत प्रेम के कारण हमारी सांगीतिक एवं सांस्कृतिक परंपरा आज तक सुरक्षित रह सकी है। भारतीय अविभाजित संगीत इन देशी राज रजवाड़ों का सदैव रेढ़ी रहेगा। भले ही आज स्वतंत्र भारत में कलाकारों को सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है, फिर भी संगीत कला और उसके कलाकारों को आज भी ऐसे गुणग्राही राजाओं की कमी महसूस होती है। अब हम आगे कुछ उन राज्यों के विशेष चर्चा करेंगे जहां संगीत और संगीतकारों को संरक्षण मिला। पहला, रामपुर दरबार की परंपरा। उत्तर भारत का रामपुर राज्य एक लंबे काल पर्यंत उत्तर भारतीय संगीत प्रणाली का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात 18वीं शती के उत्तरार्ध में लखनऊ संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। लखनऊ के नवाबों की गुणग्राहिता के कारण दिल्ली के बहुतेरे कलाकार वहां आकर बस गए। अवध के संगीत प्रेमी नवाबों ने उन सबको सदा आश्रय दिया। लखनऊ दरबार के आश्रित कलाकारों में उस्ताद मौदू खां, बक्सू खां, सलारी मियां, हाजी विलायत अली खां फरुखाबाद, पंडित राम सहाय जी बनारस जैसे तबला नवाज तथा कुदौ सिंह जैसे मृदंगाचार्य सम्मिलित थे। किंतु वाजिद अली शाह के समय में धीरे धीरे ह्रास आने लगा था। तत्पश्चात सन 1875 की राष्ट्रीय क्रांति में नवाब वाजिद अली शाह के राज्य का पतन हो गया। इसके साथ ही लखनऊ के कलाकार भी आश्रयहीन हो गए। उन दिनों अच्छे संगीत ज्ञाता और आश्रयदाता के रूप में रामपुर दरबार के नवाबों की काफ़ी कीर्ति फैली हुई थी। अतः बहुतेरे कलाकार लखनऊ छोड़कर रामपुर के नवाबों की शरण में चले गए। रामपुर के साथ अंग्रेजों का संबंध मैत्रीपूर्ण था। पृष्ठ संख्या 183। अतः वहां के नवाबों को संगीत तथा साहित्य को प्रोत्साहन देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रामपुर के अधिकतर नवाब केवल गुणग्राही रसिक व्यक्ति ही नहीं थे, वरन स्वयं संगीत साधक एवं उत्कृष्ट कलाकार भी थे। यही कारण है कि पिछले 150 वर्ष तक रामपुर राज्य संगीत का महत्वपूर्ण स्थान एवं संगीतकारों का प्रिय अड्डा रहा। यह वही स्थान है जहां जग प्रसिद्ध संगीतकार पंडित रविशंकर एवं उस्ताद अली अकबर खां के गुरु बाबा अलाउद्दीन खां ने उस्ताद वजीर खां के पास वर्षों पर्यंत संगीत साधना की थी। इसी रामपुर दरबार के गुणी नवाबों और दरबारी कलाकारों से पंडित भातखंडे ने संगीत शास्त्र का अध्ययन किया था। जिसके फल स्वरूप आज संगीत के इतिहास में क्रांति संभव हो सकी है, तथा इसी रामपुर दरबार में विद्वान पंडित कैलाश चंद देव बृहस्पति का उदय हुआ, जिनके प्रपितामह से रामपुर दरबार का संबंध राज पंडित के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा था। रामपुर के रूहला वंश के प्रथम नवाब अली मोहम्मद खां दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले सन 1719 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक के समय में हुए थे। दिल्ली के संपर्क में आने के कारण उनमें भी संगीत एवं साहित्य के संस्कार उद्भवित हुए, जो उनके वंशजों में फैलकर पल्लवित हुए, किंतु विद्या और कला की दृष्टि से कल्बे खां का समय सन 1864 से सन 1887 ईस्वी तक अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके दरबार में बहादुर हुसैन खां सुरसिंगार वादक से लेकर अनेक गुणीजन आश्रित थे, जिनमें कुदव सिंह पखावजी का नाम भी लिया जाता है। अवध के पतन के पश्चात कुदव सिंह जी कुछ समय तक रामपुर दरबार के आश्रित कलाकार रहे। लखनऊ के उस्ताद मौदू खां तबला वादक भी कुछ वर्ष उनके दरबारी कलाकार रहे। उस्ताद मौदू खां की मृत्यु 75 वर्ष की आयु में रामपुर में ही हुई थी। नवाब कल्बे अली के सौतेले भाई नवाब हैदर अली खां साहित्य और संगीत के महान उपासक थे। संगीत के अनेक वाद्यों पर उनका अद्भुत प्रभुत्व था। नवाब हैदर अली के पुत्र नवाब छम्मन खां और नवाब जानी साहब भी अपने पिता की तरह ही संगीत के परम सुधारक एवं गुणग्राहक रहे। पंडित भातखंडे जी अपने गुरु के रूप में नवाब छम्मन खां साहब का अत्यंत आदर करते थे। तत्पश्चात सन 1889 ईस्वी में नवाब हामिद अली खां रामपुर की गद्दी पर बैठे और तब से रामपुर में मानो संगीत का स्वर्ण युग प्रारंभ हो गया, जो सन 1930 में उनकी मृत्यु पर्यंत रहा। नवाब हामिद अली स्वयं ध्रुपद पखावज तबला तथा नृत्य के विशेषज्ञ थे। पंडित भातखंडे जी नवाब हामिद अली के शिष्य बने थे। नवाब हामिद अली के उपरांत भातखंडे जी ने नवाब हैदर अली के पुत्र नवाब छम्मन खां साहब एवं उनके मित्र ठाकुर नवाब अली से भी संगीत विषयक अनेक बातों का एवं रागों के तत्व भेद का ज्ञान प्राप्त किया था। पंडित भातखंडे जी की ऐतिहासिक रचनाओं पर रामपुर के नवाबों के अनुग्रह तथा वहां के दरबारी गुणीजनों से किए गए विचार विनिमय का गहरा प्रभाव है। उस्ताद हामिद अली खां स्वयं तबले के अच्छे ज्ञाता एवं वादक थे। सुप्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद आजिम खां नवाब साहब के गंडाबद्ध शिष्य थे। नवाब हामिद अली खां के दरबार में सैकड़ों संगीतज्ञ आश्रित थे। पृष्ठ संख्या 184, जिनमें तबला पखावज के कलाकारों में सर्वश्री गया प्रसाद पखावजी, अयोध्या प्रसाद पखावजी, नासिर खां पखावजी, उस्ताद नथू खां दिल्ली घराना, आजिम खां तबला वादक आदि के नाम प्रमुख हैं। फरुखाबाद घराने की तबला परंपरा को फूलने फलने का पूर्ण अवसर रामपुर दरबार में ही मिला था। फरुखाबाद घराने के उस्ताद निसार अली खां सर्वप्रथम नवाब हामिद अली के समय में रामपुर में आकर बसे थे। उनके पीछे पीछे उनके छोटे भाई उस्ताद नन्हे खां भी रामपुर आ गए। अपने पिता नन्हे खां के साथ उनके पुत्र उस्ताद मसीद खां तथा पौत्र करामतुल्ला भी रामपुर रहने लगे थे। इस प्रकार करीब 50 वर्ष का दीर्घकाल फरुखाबाद घराने के तबला वादकों ने रामपुर रियासत में बिताया और यहीं से सुप्रसिद्ध होकर यह घराना सारे भारतवर्ष पर छा गया। सन 1930 में नवाब हामिद खां का देहांत हो गया। तदुपरांत नवाब रजा अली खां गद्दी नसीन हुए। नवाब रजा अली खां भी संगीत प्रेमी एवं कलाकारों के आश्रयदाता थे, किंतु नवाब हामिद अली खां के देहांत के बाद उस्ताद मसीद खां रामपुर में नहीं रह सके और अपने पुत्र करामतुल्ला के साथ कलकत्ता चले गए। सन 1930 से सन 1966 तक नवाब रजा अली जीवित रहे। उनके दरबार में उस्ताद अजीम खां, उस्ताद अहमद जान थिरकवा तथा उस्ताद शौकत अली जैसे तबला नवाज कई वर्ष पर्यंत आश्रित कलाकार रहे। उस्ताद शौकत अली के सुपुत्र असलम हुसैन तत्पश्चात रामपुर छोड़कर कलकत्ता चले गए। मध्य प्रदेश की विविध दरबारी परंपराएं। महत्वपूर्ण संगीत जगत जिन पर गौरव कर सके ऐसे महान कलाकार, विद्वान, संगीत प्रोत्साहक एवं गुणग्राही शासकों से मध्य प्रदेश की धरती समृद्ध है। वहाँ की रियासतें जैसे कि ग्वालियर, रीवा, रायगढ़, दतिया, इंदौर, मैहर, उज्जैन, जावरा, रतलाम, देवास, धार, सागर, बुरहानपुर आदि संगीत के लिए भारत भर में सुप्रसिद्ध हैं। वहाँ के गुणग्राही शासकों ने संगीत एवं संगीतकारों को सदा प्रोत्साहन एवं आश्रय दिया। ग्वालियर के राजा मान सिंह मांडो की रूपमती बाज बहादुर, दतिया के राजा भवानी सिंह तथा रायगढ़ के महाराज चक्रधर सिंह जैसे संगीतानुरागी संगीतज्ञ राजाओं ने इस प्रदेश को गौरवान्वित किया है। संगीत जगत को इस प्रदेश के ने ऐसे ऐसे समर्थ कलारत्न भेंट किए हैं जो अपने क्षेत्र में अजर अमर हैं। तानसेन को कौन भूल सकता है। तानसेन के उपरांत पिछली 2-3 सदियों में वहाँ कुछ विशिष्ट प्रतिभाएं इतनी समर्थ सिद्ध हुई हैं कि जिनके द्वारा नवीन परंपराओं तथा घरानों का भी आविष्कार हुआ है। विश्वविख्यात बाबा अलाउद्दीन खां, उस्ताद अली अकबर, पंडित रविशंकर आदि कलाकार मध्य प्रदेश की ही देन है। ग्वालियर के राजा मान सिंह और संगीत सम्राट तानसेन तथा मांडो के राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती से लेकर आधुनिक युग के सैकड़ों कलाकार जिनमें मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अली अकबर खां, पंडित रविशंकर, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के उपरांत इंदौर के उस्ताद अमीर खां, पंडित सखाराम पंत आगले, पंडित अंबादास पंत आगले, पृष्ठ संख्या 185, गोविंद राव राजवैद, उस्ताद जहांगीर खां, बीजना के राजा छत्रपति सिंह देवजूदेव, बुरहानपुर के पंडित गोविंद राव बुरहानपुरकर, ग्वालियर के राजा भैया पूंछवाले, बाबा साहेब पूंछवाले, जावरा के उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर सितारवादक, उज्जैन के सितारवादक पंडित कृष्णराव आष्टेवाले, देवास के उस्ताद रज्जब अली तथा पंडित कुमार गांधर्व, इंदौर के उस्ताद बंदे अली खां बिनकार, चुन्नाबाई उस्ताद मुराद खां बिनकार, उस्ताद आबिद हुसैन खां बिनकार, ग्वालियर के उस्ताद हद्दू खां, उस्ताद हस्सू खां, उस्ताद बड़े मोहम्मद खां, उस्ताद नत्थे खां, उस्ताद नत्थन पीर बख्श खां, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद रहमत खां अली, उस्ताद हाफिज अली, पंडित एकनाथ, पंडित शंकर राव, पंडित रामकृष्ण शंकर पंडित, रायगढ़ में महाराज चक्रधर सिंह, मृदंग सम्राट कुदौ सिंह महाराज, मृदंगाचार्य नाना पानसे, ग्वालियर के पंडित जोरावर सिंह, पंडित सुखदेव सिंह, पंडित पर्वत सिंह, उस्ताद हाफिज अली खां, उस्ताद अहमजद अली, रायगढ़ के मृदंग वादक ठाकुर लक्ष्मण सिंह सीन, ठाकुर जगदीश सिंह, दुर्गा प्रसाद कथक, पंडित कार्तिक राम कथक, कल्याण राय कथक, श्रीमती डॉक्टर अनीता सेन, डॉक्टर अरुण कुमार सेन तथा शास्त्रकार शरद चंद्र परांजपे, प्यारे लाल श्रीमाल एवं रामचरण दुबोलिया का समावेश भी इनमें होता है। ताल वाद्य के क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश का योगदान अत्यंत है। संपूर्ण भारत की आधुनिक पखावज विद्या और उसकी परंपरा का वह आदि स्थान माना जा सकता है। पखावज के दोनों प्रमुख घराने कुदौ सिंह तथा नाना पानसे मध्य प्रदेश की ही देन है। उदय सिंह की परंपरा दतिया से फैली है और पानसे की परंपरा इंदौर से। ये दोनों पखावज के कला के धुरंधर पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। ग्वालियर के पंडित जोरावर सिंह, उनके पुत्र सुखदेव सिंह, पौत्र पर्वत सिंह तथा प्रपौत्र विजय सिंह, माधव सिंह तथा गोपाल सिंह की परंपरा भी काफ़ी प्रचलित है। हम यहाँ मध्य प्रदेश की कुछ विशिष्ट दरबारी परंपराओं का विस्तृत इतिहास देंगे जो केवल तबला तथा पखावज से संबंधित है। रायगढ़ दरबार की परंपरा। मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत की राज परंपरा अति प्राचीन है। संगीत कला के क्षेत्र में उसका अपना निजी महत्व रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत में रायगढ़ में ऐसे ऐसे संगीतानुरागी शासक हुए जिनकी सांस्कृतिक अभिरुचि और संगीत प्रेम ने रायगढ़ को एक विशेष गौरव प्रदान किया। वर्तमान रायगढ़ राज्य की नींव डालने वाले महारथी नरेश मदन सिंह की 7वीं पीढ़ी के राजा भूपदेव सिंह संगीत के रसिक व्यक्ति थे। गणेशोत्सव के समय संगीत सम्मेलनों का आयोजन उनके पिताजी राधा घनश्याम के समय से ही होता आ रहा था। राजा भूपदेव सिंह के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र राजा नटवर सिंह उर्फ नारायण सिंह गद्दी नशीन हुए। उनका शासनकाल सन 1917 से 1923 तक रहा। वे स्वयं अच्छे मृदंग वादक थे तथा संगीत के अत्यंत अनुरागी थे, किंतु रायगढ़ राज्य में संगीत का चरमोत्कर्ष संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह के नाम से में ही हुआ माना जाता है। पृष्ठ संख्या 186, जो कि महाराज भूपदेव सिंह के द्वितीय पुत्र थे। वे अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज नटवर सिंह के पश्चात गद्दी पर बैठे। उनका शासनकाल सन 1923 से 1947 तक का रहा है। सन 1947 में केवल 42 वर्ष की अल्प आयु में जब उनका देहांत हुआ, तब से रायगढ़ का संगीत महल सूना पड़ गया। राजा महाराजा चक्रधर सिंह केवल संगीत प्रेमी ही नहीं, वरन स्वयं एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ, तबला वादक, हारमोनियम वादक, सितार वादक तथा कथक नृत्य के विशेषज्ञ एवं रचनाकार थे। भारत के श्रेष्ठ कलाकार दूर दूर से आकर उनके समक्ष अपनी कला प्रदर्शित करने में गौरव का अनुभव करते थे। श्रेष्ठतम गायक, वादक, नर्तक उनके यहाँ राजाश्रय पाकर रायगढ़ दरबार की सुशोभित करते थे। उल्लेखनीय है कि महाराज चक्रधर सिंह जी को लखनऊ के संगीत सम्मेलन में संगीत सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था। सहज है कि ऐसे गुणग्राही राजा के दरबार में कलाकारों का मेला सदैव लगा रहता होगा। कथक नृत्य तथा तबला एवं पखावज के प्रति महाराज को बेहद लगाव था, अतः उनके दरबार में नृत्य तथा ताल वाद्यों के उत्कृष्ट कलाकारों की ऐसी महफिलें सजती थीं जिनकी कल्पना करना भी आज कठिन है। हम यहाँ पर उनके दरबार के केवल तबला तथा पखावज के कलाकारों की ही चर्चा करेंगे। उस्ताद कादिर बख्श खां, उस्ताद मलंग खां, उस्ताद करम इलाही खां पंजाब, उस्ताद गुलाब हुसैन खां खलीफा नत्थू खां दिल्ली, उस्ताद मुनीर खां मुंबई, उस्ताद अजीम बख्श, उस्ताद फिरोज खां दिल्ली वाले, उस्ताद कादिर बख्श के शिष्य उस्ताद सादिक हुसैन, उस्ताद हबीबुद्दीन खां मेरठ, श्री कृपाराम खास रायगढ़, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, उस्ताद जमाल खां, उस्ताद भुरजी खां इंदौर, उस्ताद अमीर हुसैन खां मुंबई, उस्ताद कल्लू खां तथा अनुज राम मालाकार आदि तबला वादक, पंडित शोभा राम अय्यर कोयम्बतूर जैसे घटम वादक तथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, पंडित सखाराम, पंडित शंभु प्रसाद पखावजी बांदा, श्री रामदास जी मुंबई, ठाकुर जगदीश सिंह दीन, श्री कृष्ण राय पखावजी, पंडित वासुदेव पखावजी आदि पखावज वादक उनके दरबार को शोभायमान करते थे। कुदउ सिंह घराने के मृदंगाचार्य अयोध्या वाले बाबा ठाकुर दास जी वर्षों पर्यंत रायगढ़ दरबार में रहे। महाराज चक्रधर सिंह ने अनेक विद्वानों की सहायता से स्वयं संगीत के कई अमूल्य ग्रंथों की रचना की। इन हस्तलिखित विशालकाय ग्रंथों में राग रत्न मंजूषा, नर्तन सर्वस्व, ताल तोय निधि, ताल बल पुष्पाकर तथा मूरज परन पुष्पाकर प्रमुख हैं। ताल तोय निधि, ताल बल पुष्पाकर तथा मूरज परन पुष्पाकर लय और ताल के मूल्यवान हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जो महाराजा चक्रधर सिंह जी के वंशज द्वारा आज भी सुरक्षित है। पृष्ठ संख्या 187। ताल तोय निधि का वजन 32 किलोग्राम है। वह संस्कृत श्लोकों में लिखा गया विशालकाय ग्रंथ है। उसमें करीब 2000 श्लोक हैं। भरत नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर तथा संगीत कलाधर आदि ग्रंथों का आधार लेकर उसकी रचना की गई है, जिसमें 2 से लेकर 380 मात्रा तक के तालों का ताल चक्र सहित विशद वर्णन है। महाराज चक्रधर सिंह ने इन ग्रंथ लेखन का जो अनमोल कार्य किया है, उनके पीछे उनके गुरुदेव ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी पखाव जी, पंडित भगवान सिंह भगवान जी पांडे, अयोध्या निवासी पंडित भूषण महाराज तथा संस्कृत श्लोकों के लिए महामहोपाध्याय पंडित सदाशिव दास शर्मा का बहुत बड़ा योगदान था। इन विद्वानों के सहयोग से ऐसे अमूल्य ग्रंथों की रचना हो सकी है। 3. इंदौर दरबार की परंपरा। मध्य प्रदेश के रमणीय नगर इंदौर को कला एवं साहित्य में समृद्ध करने का श्रेय इंदौर के महाराजा शिवाजी राव होलकर को जाता है। देश के अनेक सुप्रसिद्ध कलाकार उनके दरबार में आश्रित थे। मृदंग केसरी नाना पान से उन्हीं के दरबार के कला रत्न थे। काशी में विद्या भ्यास पूर्ण करने के पश्चात नाना पानसे जब इंदौर पहुँचे तो वहाँ के शासक शिवाजी राव के स्नेह एवं सम्मान से इतने प्रभावित हुए कि विविध रियासतों के राजा महाराजाओं के सतत आमंत्रण मिलते रहने पर भी वे मरण पर्यंत इंदौर दरबार को छोड़कर कहीं नहीं गए। महाराजा शिवाजी राव के पश्चात उनके सुपुत्र महाराजा तुक्कोजी राव होलकर गद्दीनशीन हुए। उनको अपने पिताजी से भी अधिक संगीत के प्रति प्रेम था, अतः सच्ची कद्रदानी के कारण उनके समय में इंदौर शहर कलाकारों का तीर्थ धाम बन गया था। होली के रंगोत्सव के अवसर पर वहां रंग पंचमी की गुड़ी पड़वा पर्व पर्यंत एक बहुत बड़े संगीत सम्मेलन का प्रतिवर्ष आयोजन होता था, जो इंदौर सभा के नाम से संपूर्ण देश में विख्यात था। मैसूर का दशहरा और इंदौर की होली देश भर में प्रसिद्ध थी। इस रंगोत्सव में देश के कोने कोने से कलावंत आकर इंदौर सभा में के अपने अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। महाराज दत्तचित होकर रात्रि भर संगीत का रसपान किया करते थे। ध्रुपद के डागुर घराने के प्रपितामह उस्ताद बहेराम खां डागुर इंदौर के रहने वाले थे, अतः उस्ताद नासिरुद्दीन डागुर वर्षों पर्यंत इंदौर दरबार के मुलाजिम रहे। उस्ताद बंदे अली बिनकार, उनकी पत्नी गायिका चुन्नाबाई तथा शिष्य उस्ताद मुराद खां बिनकार इंदौर के दरबारी कलाकार न होते हुए भी सदैव तुकोजी राव जैसे गुणग्राही राजा के दरबार में अपनी कला का जौहर दिखाने आया करते थे। पृष्ठ संख्या 188। महाराजा तुकोजी राव के दरबारी कलाकारों में ध्रुपदीय नासिरुद्दीन डागुर, पखावजी पंडित सखाराम पंत आगले, उस्ताद बाबू खां बीनकार, उस्ताद आबिद हुसैन खां बीनवादक था। ध्रुपदीय उस्ताद लतीफ खां, पंडित केशव बुआ आपटे ध्रुपदीय, पंडित माधव राव चौधूले हारमोनियम वादक, देवीदास सूरदास बुंदू खां सारंगी वादक, इंदौर की वजीर जान बाई, ग्वालियर की श्री जान बाई, श्रीमती ताराबाई सिरोडकर, बनारस की केसर बाई, नर्तकी हरिद्वारी बाई तथा तबला नवाज उस्ताद मौला बख्श, उस्ताद रहमान खां एवं उस्ताद जहांगीर खां आदि उल्लेखनीय हैं। हम देख चुके हैं कि नाना पानसे इंदौर दरबार के अमूल्य कला रत्न थे। उन्होंने अपनी विद्वता एवं प्रतिभा से मृदंग की कला एवं साहित्य को इतना समृद्ध किया कि उनसे मृदंग का एक पृथक घराना ही प्रारंभ हो गया, जो नाना पानसे घराने के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ है। आज भारत में जो इन्हें गिने मृदंग वादक उपस्थित हैं, उनमें पानसे घराने के कलाकारों का योगदान अमूल्य है। नाना पानसे जी के पट शिष्य पंडित सखाराम पंत आगले तथा उनके सुपुत्र पंडित अंबादास पंत आगले महाराज तुकोजी राव के दरबारी कलाकार थे। पंडित अंबादास के पुत्र कालिदास पंत तथा उनकी पुत्री चित्रांगना तथा पुत्र राजीव एवं संजय आगले इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इंदौर दरबार के राजवैद्य गोविंद भाऊ राजवैद्य स्वयं कुशल पखावजी थे तथा नाना पानसे के प्रमुख शिष्यों में थे। कहते हैं कि राजवैद्य जी पखावज के ऐसे अन्य भक्त थे कि उनके वहाँ वैदक सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए मृदंग सीखना अनिवार्य था। गोविंद भाऊ राजवैद्य के चारों पुत्र तथा पौत्र आज भी मृदंग साधना में निमग्न हैं तथा पानसे जी की परंपरा को गौरवान्वित कर रहे हैं। महाराजा तुकोजी राव के दरबार में अनेक कलाकार अपनी कला का जौहर दिखाने आते थे। उनमें पंडित लक्ष्मण राव का उल्लेख अनिवार्य है। हैदराबाद दरबार के पंडित वामन राव चांदो डकर के छोटे भाई पंडित शिष्य पंडित लक्ष्मण राव मृदंग पुराण में अत्यंत दक्ष थे। महाराज के दरबार में उनका मृदंग पुराण अत्यंत लोकप्रिय था। तुकोजी राव महाराज उनकी कला पर इतने मुग्ध थे कि वे उन्हें अपना दरबारी कलाकार नियुक्त करना चाहते थे, किंतु योग साधना में लीन होने के कारण भक्त प्रकृति के लक्ष्मण राव दरबारी सेवक नहीं हुए। उन्होंने अपने एक शिष्य देवीदास सूरदास को महाराज की सेवा में रखा दिया था। देवीदास भी कुशल कलाकार थे। वे मृत्यु पर्यंत इंदौर में ही रहे। तदुपरांत श्रीमंत तुकोजी राव के दरबार में एक त्रिमूर्ति भी उन दिनों बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जिनका गायन वादन सुनने के लिए लोग ललायित रहा करते थे। वे थे केशव नारायण आपटे ध्रुपद गायक, सखाराम पंत आगले मृदंग वादक तथा माधव राव चौधूले हारमोनियम वादक। सन 1926 के पश्चात तुकोजी राव के सुपुत्र यशवंत राव होलकर गदीनशीन हुए। नए महाराज संगीत प्रेमी तो थे, किंतु अपने पिता जैसे अनन्य संगीतानुरागी नहीं थे। अतः उनके समय में बहुत से कलाकार इंदौर छोड़कर चले गए। मान्यतानुसार इंदौर के बहुतेरे कलाकार उन दिनों हैदराबाद दरबार में पहुंच गए थे। जिस प्रकार पखावज के क्षेत्र में इंदौर का अपना अनोखा स्थान है, उसी प्रकार तबले के क्षेत्र में भी इंदौर का योगदान महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 189। दिल्ली के पास रियासत पटौड़ी में उस्ताद नियामत खां 100-150 वर्ष पूर्व हुए थे। वे दिल्ली घराने के तबला वादक थे तथा इंदौर आकर बसे थे। उनके सुपुत्र उस्ताद मुसाहिब खां इंदौर संभाग के तबले के प्रमुख प्रचारक एवं गुरु माने जाते हैं। इन्हीं की शिष्य एवं वंश परंपरा इंदौर के तबला जगत पर अपना वर्चस्व रखती है। उस्ताद मुसाहिब खां सुप्रसिद्ध ख्याल गायक स्वर्गीय उस्ताद अमीर खां के नाना थे। यद्यपि वे कुछ वर्ष तक हैदराबाद राज्य में भी मुलाजिम रहे, परंतु इंदौर के साथ उनका गहरा संबंध सदैव बंधा रहा। कहा जाता है कि मुसाहिब खां ने कुछ समय पर्यंत हैदराबाद में उस्ताद हैदर अली से भी तबला सीखा था। मुसाहिब खां के तीन पुत्र तथा एक पुत्री थी। उनके दो पुत्र उस्ताद बहादुर खां तथा उस्ताद करमू खां ने तबले में काफ़ी नाम कमाया। वे दोनों हैदराबाद राज्य के दरबारी कलाकार रहे। उनके तीसरे पुत्र उस्ताद अलाउद्दीन खां सुप्रसिद्ध सारंगी वादक थे। वे जावरा स्टेट के दरबारी कलाकार तथा वहां के नवाब इश्तेखार अली के गुरु थे। उस्ताद मुसाहिब खां के पौत्र उस्ताद अजीम खां जावरा वाले भारत प्रसिद्ध कलाकार हुए। उनके पुत्र उस्ताद निजामुद्दीन और पौत्र कमालुद्दीन इस परंपरा को संभाले हुए हैं। उस्ताद मुसाहिब खां ने कई उत्कृष्ट शिष्य तैयार किए थे, जिनमें सुप्रसिद्ध तबला नवाज उस्ताद मौला बख्श, उनके भाई उस्ताद करीम बख्श, तबला नवाज उस्ताद मुनीर खां के पिता जो हैदराबाद में रहते थे, उस्ताद रहमान खां, उस्ताद भूरे खां, उस्ताद दल्ला जी, उस्ताद शो बख्श खां तथा पंडित मुन्ना लाल पवार आदि प्रमुख हैं। पंडित मुन्ना लाल मुख्यतः पखावज वादक थे तथा नाना पानसे घराने के पंडित सखाराम पंत आगले के शिष्य थे। उनके पुत्र चुन्नीलाल पवार तथा पौत्र लक्ष्मी नारायण पवार आज भी इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। तबला नवाज उस्ताद मौला बख्श के प्रमुख शिष्य एवं प्रशिष्यों में उदयपुर के उस्ताद अब्दुल हाफिज खां, लखनऊ के पंडित सखाराम, पंडित बाबू बालू भाई रुकडीकर, पंडित नारायण राव इंदौरकर, पंडित चतुरलाल तथा श्री माधव राव इंदौरकर आदि प्रमुख हैं। उस्ताद रहमान खां की शिष्य परंपरा में उस्ताद यूसुफ खां, उस्ताद अशरफ खां, उस्ताद हाफिज खां उदयपुर वाले, उस्ताद नजीर खां, उस्ताद सुलेमान खां, पंडित श्यामलाल, उस्ताद फयाज खां, उस्ताद हिदायत खां, प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव इलाहाबाद आदि प्रमुख हैं। उस्ताद भूरे खां की परंपरा में पुत्र उस्ताद अब्दुल्ला खां, पौत्र इस्माइल दद्दू खां, उस्ताद धूलजी खां, उस्ताद अजीज अहमद आदि प्रमुख हैं। उस्ताद धूलजी खां ने गुरु उस्ताद भूरे खां के उपरांत पूरब घराने के खलीफा उस्ताद अब्बी आबिद हुसैन खां से के शिष्य पंडित गंगा प्रसाद जी से भी सीखा था। उस्ताद मुसाहिब खां और उनके पिताजी उस्ताद नियामत खां से चली आई इंदौर की यह तबला परंपरा अखिल भारतीय स्तर पर विख्यात है। इंदौर निवासी उस्ताद जहांगीर खां साहब पूरब घराने के मशहूर कलाकार तथा लखनऊ के उस्ताद आबिद हुसैन खां के शिष्य थे। वे इंदौर दरबार में वर्षों तक सेवारत रहे। करीब 100 वर्ष की लंबी उम्र में सन 1976 में इंदौर में ही उनका देहांत हुआ। उनसे तालीम पाने वाले कलाकारों में पंडित चतुरलाल, पंडित नारायण राव इंदौरकर, उस्ताद महबूब खां मिरजकर पुणे, श्री शरद खरगोनकर, श्री दीपक गरुड़, श्री रवि दाते आदि प्रमुख हैं।